अब आगे कुछ चीज़ें हम इंशाल्लाह देखेंगे जिनका ताल्लुक फिर आदम और इब्लीस के किस्से से, लेकिन इसमें से कुछ इब्लीसी रवैये इंशाल्लाह हम साथ साथ नोट करेंगे और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि हमें शैतान के शर से महफूज रखे। आयत नंबर 20 से देखेंगे, बल्कि 19 से। वयादम उस्कुनन तवज़ौजुकल जन्ना, फिर हमने आदम से कहा कि तू और तेरी बीवी दोनों जन्नत में रहो, जहाँ जिस चीज़ को तुम्हारा जी चाहे खाओ, मगर इस दरख्त के पास ना फटकना वरना ज़ालिमों में हो जाओगे। फवसवस लहुम अश्शैतानु, फिर शैतान ने इनको बहकाया ताकि इनकी शर्मगाहें जो एक दूसरे से छुपाई गई थीं इनके सामने खोल दे। इसने उनसे कहा तुम्हारे रब ने तुम्हें इस दरख्त से रोका, इसकी वजह इसके सिवा और कुछ नहीं कि कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ। देखिए जालिम अल्लाह से बदगुमान कर रहा है, कह रहा अल्लाह को डर है कि कहीं तुम हमेशा ज़िंदा रह गए या फरिश्ते बन गए तो अल्लाह की खुदाई में शामिल हो जाओगे, इसलिए उसने तुमको रोक दिया या तुम्हें हमेशगी की ज़िंदगी ना हासिल हो जाए। और उसने कसम खाकर कहा, क्या कहा, आप भी हाईलाइट कर ले, वका समहुमा इन्नी लकुमा लमिनन्ना सहीन, मैं तो तुम्हारा सच्चा खैर ख्वाऊँ, आई एम योर वेल विशर, बेटा मैं तुम्हारी दुश्मन थोड़ी हूँ, फिर देखो ना आखिर मैं तुम्हारी माँ हूँ, फिर देखो मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं कोई तुम्हारा दुश्मन हूँ। इस तरह के जुमले सुने आपने? शैतान इस तरह रिश्तों के रूप में आके हमें बहकाता है, तुमने क्या कर लिया अपना हाल, तुमने तो ज़िंदगी चीरन कर दी, देखो आंखें देखो ज़रा जाके, देखो झुरियाँ पड़ गई हैं, देखो क्या शक्ल बनाई हुई है, देखो 10 साल अपनी उम्र से बड़ी लग रही हो सर पे स्काफ लेकर, और देखो मैं तुम्हारी दुश्मन थोड़ी हूँ, मुझे भी पता है कि तुमने अल्लाह को खुश रखना है, पर ज़रा हल्के हल्के लो। इस तरह शैतान अपना बन के डसता है, कभी ये दुश्मन के रूप में नहीं आता, ये अपनों के रूप में, ये दोस्तों के रूप में आता है और इस तरह धोखा दे देता है जैसे आदम को दिया। इसी तरह धोखा देकर वो इन दोनों को रफ्तार रफ्तार अपने ढप पर ले आया, एकदम नहीं लाता, स्लो पॉइजनिंग, पहले थोड़ी बात सिखाता है फिर थोड़ी थोड़ी करते करते ज़्यादा करवा देता है। आखिरकार जब उन्होंने इस दरख्त का मज़ा चखा तो इनके सतर एक दूसरे के सामने खुल गए। अल्लाह अकबर, देखिए शैतान का पहला हमला इंसान की हया पे, बेहया कर दिया, थे शौहर बीवी सतर खुलवा दिए, चखाया फल और सतर खुले, क्या पता चला, वो फल दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि आदम और हव्वा के लिए हराम था, अल्लाह ने मना कर दिया तो हराम था ना। आज जो चीज़ें हराम है वो क्यों हराम है कि अल्लाह ने मना की, तो हराम खाने का पहला असर कि शर्मगाहें खुल गईं। जिस बंदे की कमाई में नाजायज़ माल शामिल हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता फिर कपड़े हटने लगते हैं और इंसान बेहया होने लगता है, लेकिन फितरत के अंदर हया वदियत की हुई थी, किसी ने नहीं बताया कि क्या करो और कोई कपड़े पहनो, लेकिन वो अपने जिस्म को जन्नत के पत्तों से ढांकने लगे, किसी ने नहीं बताया, ये फितरत में। आज लोग शर्मसार होते हैं अपने आप को कपड़ों में ओढ़ता छुपाता देकर दूसरों के सामने जाते, देखिए कि कपड़े उतारना जानवरों की अलामत है, जानवर कपड़े नहीं पहनते, इंसान पहनता है। आप कहते हैं हमें शर्म आती है किसी के सामने इस हुलिये में जाते हुए, तो पूछें उसको शर्म आई अपने आप को आधा नंगा करके बाहर आते हुए? कभी भी आपके जहन में ये कॉम्प्लेक्स आ जाए ना कि इस्लाम और मुसलमान और ये दीन हमें इस तरह की बातें सिखाता है कि जिसकी बुनियाद पर हम ये और वो हो जाएंगे, तो आप पूछें कि मैं तो फितरत पर हूँ, फितरत पर तो वो नहीं है जो अपने आप को जानवरों के दर्जे पर लाते हैं। एक मारूफ थेरी आपने नाम सुना होगा डार्विन की, क्या उसका नज़रिया था कि इंसान बंदरों की औलाद है, बंदरस से इंसान बना, बाकी सारी बातों को छोड़ दें, यहाँ वो समझ ले कि आखिर इस थेरी को इतना पब्लिसाइज क्यों किया गया और आज उस पर पूरी डिग्रीज हैं, पूरी PhDs होती हैं। एक दफ़ा तुम ये मान लो कि इंसान जानवर से पैदा हुआ, बाकी बातें हम खुद ही मनवा लेंगे, कि देखो जानवर तो कपड़े नहीं पहनते, तुम भी ना पहनो, जानवरों में तो फ्री सेक्स है तो तुम में भी फ्री सेक्स हो गई, जानवर तो हर वक्त बेकार बेमकसद खेलते खाते कूदते, उनकी ज़िंदगी का मकसद तो बस खाना पीना है, तो तुम्हारा भी होगा। ये एक पूरा कल्चर था जो डार्विनिज्म के नाम पे आज आपको दिख रहा है। जानवर का बच्चा पैदा होता है उसके बाद माँ बाप से उसका ताल्लुक नहीं रहता, कोई किधर चला जाए कोई किधर चला जाए, आज वो सोसाइटी सामने दिख रही है कि माँ बाप पैदा करते हैं कुछ साल पाला और फिर कहा भाग जाओ, अब छोड़ो हम तुम्हारी नहीं देख सकते। ये जानवर बनाने की सतह पे, ये जो अना का टॉपिक लिया है ना, ये बड़ा अहम है। अल्लाह हमें इंसानियत के दर्जे पे ज़िंदा रखना चाहता है, शैतान हमें حیوانیت پہ لانا چاہتا ہے. اگلی آیتوں کو انشاءاللہ اس ایک بات کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے. آدم اور حوا نے جب یہ پھل کھا لیا, سطر کھل گئے, پتوں سے ڈھانپنے لگے, تب ان کے رب نے ان کو پکارا, کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے, ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے ہمارے رب, ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا, کیا تیری بات نہ مان کر اور شیطان کی مان کر. اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے. اپنا محاسبہ ہم کریں, کوئی گناہ کر کے احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا؟ فرمایا, اتر جاؤ, تم ایک دوسرے کے دشمن ہو, اور تمہارے لیے ایک خاص مدت تک زمین میں جائے قرار اور سامان زیست ہے, اور فرمایا وہیں تم کو چینا اور وہیں مرنا ہے, اور اسی میں سے تم کو آخر کار نکالا جائے گا. اے اولاد آدم, ہم نے تم پر لباس نازل کیا کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو, اور بہترین لباس تو تقویٰ کا لباس ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, شاید کہ لوگ اس سے سبق حاصل کر لیں. کیا نشانی ہے اس میں؟ ترتیب کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو پہلی دفعہ لباس کا تذکرہ آیا ہے. تین مقامات پہ پورے قرآن پاک میں لباس اور حجاب کی بات ہوتی ہے, پہلا یہ ہے, دوسرا سورۃ نور, اور تیسرا سورۃ الاحزاب. یہاں لٹرلی لباس کی بات ہے. ابھی پردے کو, باہر کی باتوں کو چھوڑ کے صرف لباس کی بات دیکھیں, دو مقاصد ہیں لباس پہننے کے. نمبر ایک, یواری سواتکم, تمہاری شرم گاہوں کو چھپا دے. یہ شرط اگر پوری نہ ہوئی تو وہ لباس لباس ہی نہیں ہوگا. لباس پہن کے اگر ننگے رہے تو وہ لباس ہی نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا, قیامت کے قریب ایسی عورتوں کو تم دیکھو گے کہ لباس پہنتے ہوئے بھی برہنہ ہوں گی, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر سے کپڑوں سے انڈر گارمنٹس تک بھی چھلکتے ہوئے دکھیں, تو اس کو لباس تو نہیں کہیں گے. دوسری چیز ہے ریشا. ریش خوبصورتی کو کہتے ہیں. لباس خوبصورت ہو سکتا ہے, موتی ستارے لگا لیں, پھول لگا لیں, کڑھائی کر لیں, کچھ بھی کر لیں, آپ پہن لیں. عورت ہونے کے ناطے عورتوں میں ہیں, گھر میں ہیں, اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے اچھا لباس پہننے, کوئی حرج کی بات نہیں. رہ گئی بات یواری سواتکم, یہ کیسے ہوگی, اس کو ذرا سمجھ لیجئے گا. شرم گاہ, پرائیویٹ پارٹس, اللہ تعالیٰ نے ضرورت کے تحت عورت کے جسم میں کچھ ابھار رکھے, مردوں کا جسم کچھ اور طرح سے بنایا. یہ سب چیزیں ضرورت کے تحت تھیں, کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی کہ خوبصورتی کے لیے. اللہ نے جو کام لینا تھا ان اعضاء سے اسی طرح سے ان کو بنا دیا. کام کیا تھا؟ ان کو چھپا کے رکھو. جانوروں کے اللہ نے خود چھپا دیے. کوئی جانور آپ کو ایسا نہیں دیکھے گا جو انسان کی طرح یوں کھڑا ہو اور اس کے پرائیویٹ پارٹس اس کے تنگ لباس میں سے دکھے. جانوروں کے پرائیویٹ پارٹس بھی تو وہ یوں ہوتے ہیں, میرے ہاتھ کی طرف آپ دیکھ رہے ہوں گے, اور جو نہیں دیکھ پا رہے یعنی مڑے ہوئے ہیں, ان کی ٹانگیں نیچے ہیں, ان کے پرائیویٹ پارٹس جسم کے اندر چھپے ہوئے ہیں, اوپر صرف ان کے وہ باہر کے حصے ہیں. اب آپ کسی جانور کو یوں کرنے کی بجائے اس کی دو ٹانگوں پہ کھڑا کریں تو کیا وہ نہیں بنتا جو ایک پورے ٹائٹ ڈریس میں کھڑا ہوا انسان ہوتا ہے؟ دو پابندیاں ہیں جس کی وجہ سے پرائیویٹ پارٹس چھپتے ہیں. نمبر ایک, شفاف نہ ہو, اور نمبر دو, وصاف نہ ہو. یہ حدیث میں لفظ آئے ہیں. شفاف, سی تھرو, اندر سے جھلکے پھر بھی دکھتا ہے. کوئی چیز بہت سی تھرو ہوگی تو اندر سے جسم جھلکتا ہے نا. اور دوسرا کہ وصاف, سواد سے آتا ہے یہ وصاف, وصف بیان کرنے والا نہ ہو. اور یہ کب ہوگا؟ جب لباس بہت ٹائٹ ہوگا, ایک ایک وصف دکھے, یہاں سے کمر اتنی, یہاں سے بازو اتنے, یہاں سے ہاتھ اتنے. یہ دو شرطیں ہیں. آپ جہاں بھی اپنا لباس بنائیں یہ دو چیزیں دیکھ لیں. اتنا ٹائٹ تو نہیں ہے کہ جانوروں کی طرح ہر چیز دکھے. میرا کئی دفعہ دل چاہتا ہے کہ کوئی میری مدد کرے تو یہ کانسیپٹ کسی پریزنٹیشن میں دکھائیں. آپ کسی کو, میں کسی ڈریس پہ بات نہیں کر رہی, نہ ہمارا یہ موضوع ہے کہ پینٹ پہن سکتے ہیں کہ نہیں, اور چوڑی پاجامہ پہن سکتے ہیں اور نہیں, اور ساڑی نہیں, اس پہ چھوڑ دیجیے. ابھی صرف ایک شخص جو دور سے آ رہا ہے, اس نے اس کھال کے اوپر ایک اور کھال چڑھائی ہوئی ہے. وہ بلیک کلر کی جین بھی ہو سکتی ہے, وہ بلو کلر کی ہو سکتی ہے, وہ اسکن کی بھی ہے. دور سے آتے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کھال کے اوپر کھال چڑھی ہوئی ہے یا کپڑا پہنا ہے. آپ اس کو لباس کہیں گے؟ کئی دفعہ آپ دیکھیے کہ کہیں آپ ایسی جگہ ہوتے ہیں تو نیچے صرف لوگوں کے پاؤں سے لے کے گھٹنوں تک کی ٹانگیں دکھ رہی ہوتی ہیں. کوئی ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں بیٹھتے ہیں تو انتظار کے لیے اوپر کا دھڑ نہیں دکھتا. दूर से बिल्कुल मैं फील कर रही होती हूँ कि फ़र्क नहीं लगता कि कोई जानवर खड़ा है या इंसान खड़ा है। देखिए खाल हमारे ऊपर भी है ना, ये स्किन जानवरों पे भी है, अल्लाह ने जानवरों के ऊपर बाल डाल दिए कुछ ना कुछ, लेकिन जो चीज़ फ़र्क है ना इंसान के और हैवान के, वो जानवर अपनी खाल के ऊपर और कुछ नहीं डालता, और इंसान को कहा कि इस खाल के ऊपर कुछ और डालो, और उसका नाम लिबास है, लबस यलबिसु इल्तिबास, इसी से है कि छुपा लेना। अब इस स्किन के ऊपर एक और आप स्ट्रेची स्किन पहन लें, टाइट्स पहन लें, उसके अंदर अपनी जो भी पैंट्स कह लें या उसको जीन्स कह लें, और जिसको फाड़ भी लेते हैं, गुरबत के नाम पे कोई फाड़े तो लोगों को तरस आता है, और फैशन के नाम पे फाड़ें तो माँ बाप को भी शर्म नहीं आती कि हमारे बच्चे इतने गरीब हैं कि इनके कपड़े फटे हुए। सोचिए शैतान कहाँ लेके जा रहा है हमको। सिर्फ हम अपने हुलिये को किसी को ना देखें, सिर्फ यहाँ अपना मुहासबा कर लें, जब घर से बाहर निकलती हूँ तो क्या इंसान लगती हूँ कि जानवर, क्या युवारी सवातिकुम की शर्त पूरी होती है कि नहीं। और ख़वातीन जो ढीले डाले पहनती हैं उनके लिए दूसरा नुक्ता काबिल तवज्जो कि क्या लिबास सिर्फ रीश का नाम तो नहीं रख दिया कि सारी कमाई कपड़ों पे लगा दें और उसको इतना महंगा सजा लें कि खूबसूरती आ जाए। नहीं, लिबास व तकवा, तकवा के साथ पहनो, अंदर का तकवा बाहर के लिबास से झलकता है। फिर आप गैर मर्दों में और महरम और गैर महरम की बात नहीं करते, आप औरतों में भी अपना सीना खोल के नहीं बैठते, फिर आप ये नहीं पूछते औरत क्या खोले और क्या ना खोले। हया का तकाजा आता है कि वो हर चीज़ इंसान छुपा ले जिसको देखकर इंसान के अंदर शहवत आती है। अब ऐसी ही कुछ बेहयाइयाँ थी जो लोगों ने मज़हब के नाम पे की हुई थी, अल्लाह ताला उसका तस्करा करते हैं। ए बनी आदम, ऐसा ना हो कि शैतान तुम्हें फिर इस तरह फितने में मुबतला कर दे जिस तरह इसने तुम्हारे वालदैन को जन्नत से निकलवाया था। 3 सेकंड तदब्बुर करें इस आयत पे। और इनके लिबास इनसे उतरवा दिए थे ताकि इनकी शर्मगाहें एक दूसरे के सामने खोल दे। 2 मिनट कर लें इस पे भी तदब्बुर। वो और उसके साथी तुम्हें ऐसी जगह से देखते हैं जहां तुम इनको नहीं देख सकते। इन शैतान को हमने इन लोगों का सरपरस्त बना दिया जो ईमान नहीं लाते। ये लोग जब कोई शर्मनाक काम करते हैं तो कहते हैं कि हमने तो अपने बाप दादा को इसी तरीके पर पाया, यानी हम तो ख़ानदानी मॉडर्न लोग हैं, हमारे तो बड़े भी यही तरीके से पहनते उड़ते थे, अब हम क्यों ना पहने, और अल्लाह ही ने हमें ऐसा करने का हुक्म दिया है। हम तौबा, गौन, हमारे तो ख़ानदान में कोई नहीं पहनता स्काफ, मेरे तो ख़ानदान के पीछे मेरी तो पुश्तों में किसी ने नहीं पहना, तो मैं कैसे करूँ। इनसे कहो अल्लाह बेहयाई का हुक्म कभी नहीं दिया करता, क्या तुम अल्लाह का नाम लेकर वो बातें कहते हो जिसके मुतल्लिक तुम्हें इल्म नहीं कि वो अल्लाह की तरफ से हैं। बरहना तवाफ करते थे खाना काबा का मक्का वाले, बिल्कुल मादर जात नंगे, कहते थे जिन कपड़ों में गुनाह करते हैं ना इन कपड़ों में हम इबादत नहीं करेंगे। तवाफ के वह कपड़े उतार देते और औरतें अपने शर्मगाह पे एक हल्का सा कोई ऐसा कोई कपड़ा रख लेती और शेर साथ पढ़ती। इतने बेहूदा शेर हैं, आप पढ़ें तो हैरत होगी आपको। अरब कल्चर के जो शायरी है ख़ासतौर पर बहुत वल्गर है। और कहते थे ये दीन है, कि आज भी तकवा के नाम पे कुछ ऐसी बातें नहीं दिखती आपको दीन में कि जिन कपड़ों में हम गुनाह करते हैं अब उन कपड़ों में हम इबादत नहीं कर सकते। कहा अल्लाह तुम्हें बेहयाई का हुक्म नहीं देता, क्या तुम अल्लाह का नाम लेकर वो बातें करते हो जिसके मुतल्लिक तुमको इल्म नहीं कि वो अल्लाह की तरफ से हैं। ए नबी, इनसे कहो मेरे रब ने तो रास्ती और इंसाफ का हुक्म दिया है, और इसका हुक्म तो यह है कि हर इबादत में अपना रुख ठीक रखो और इसी को पुकारो और अपने दीन को इसके लिए खालिस रख कर जिस तरह इसने तुम्हें अब पैदा किया है इसी तरह तुम फिर पैदा किए जाओगे। एक गिरोह को तो इसने सीधा रास्ता दिखा दिया, यानी जो इन हुक्मों को सुन के मानता है, मगर दूसरे गिरोह पर गुमराही चस्पा होकर रह गई क्योंकि उन्होंने अल्लाह की बजाय शयातीन को अपना सरपरस बना लिया और वो समझ रहे हैं कि हम सीधी राह पर हैं। या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, ए बनी आदम हर इबादत के मौके पर अपनी जीनत से आरास्ता रहो और खाओ और पियो, लेकिन वला तुसरिफो, हद से न बढ़ो, क्योंकि अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। मुहासबे का नुक्ता, क्या खाने पीने और पहनने ओढ़ने में मैं इसराफ तो नहीं करती। कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अखरज लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क, ए नबी इनसे कहो किसने अल्लाह की जीनत को हराम कर दिया जिसे अल्लाह ने अपने बंदों के लिए निकाला था। यानी ये जब कपड़े उतार के फिरते हैं मस्जिदों में इबादत खानों में तो इनको किसने कहा, यहाँ जीनत से मुराद लिबास है, यानी बिल्कुल बरहना हो जाते थे। اور کس نے اللہ کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دیں؟ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن تو خالصتاً ان کے لیے ہوں گی۔ اسی طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جو مانے گا اس کو زیادہ سمجھ آ جائے گی۔